अब हम चलते हैं कि वसीयत को थोड़ी डिटेल से अगर देखना चाहें तो कैसे करेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इस वक्त हमारे सामने एक पेपर है जिसका नाम है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ फला, यानी ये बेसिकली इसना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसना इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसना हम लोगों को तो पता है लेकिन जो आउट ऑफ अमेरिका उनको नहीं पता। तो बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि यूएसए कनाडा दोनों में ये बेस्ड है और ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, और मेरा ख्याल है आज के इस दौर में इस वक्त जो मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट है, राइट। इसके बाद नेट आता है। अब इन्होंने एक ऐसी विल बनाई है कि अगर हम मुस्लिम इस पूरी को फिलअप कर दें और किसी भी ऐसे पर्सन से इसको अगर हम नोटरेट करवा दें यानी इसको लीगल करवा लें तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट में भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसको तो बाद में देखिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें से वो चीज़ें बताना चाहूँगी जो हमारे लिए प्रैक्टिकली है। अगर आप देखें तो इसके पहले पेज में जो जगह खाली है इसमें आपने अपना नाम लिखना होगा, आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, सिटी, कंट्री, स्टेट कौन सी हैं, और आप ये भी लिखेंगी कि ये जो कुछ मैं लिख रही हूँ ये मैं बिल्कुल अपने होश और हवास से लिख रही हूँ और ये मुझ पर कोई फोर्स नहीं कर रहा, और ये मेरी तरफ से एक इस किस्म का इजहार होगा कि जो बातें इसमें कही जा रही है ये मैं खुद अपनी खुशी से कर रही हूँ, ठीक है। ये शुरू का पैराग्राफ आप बाद में पढ़ लें, और इसमें फिर आपने देखा है कि आई बियर विटनेस, मैं इसका सिर्फ उर्दू में खुलासा कर रही हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि यानी मैं अपने मुसलमान होने का भी इकरार करती हूँ, नबी सल्लम को भी रसूल मानती हूँ और अल्लाह ताला की बंदगी भी है, और मैं अपने जो रिश्तेदार और जो मेरे दोस्त हैं जो कि वाकई वो भी ईमान लाते हैं और जिस तरह के भी उनके हालात हैं उनके जो बिलीफ हैं, लेकिन यानी मैं अपने अकीदे पे पुख्ता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी चीज़ों के साथ क्या मामला होगा। पहला आर्टिकल देखिएगा, फ्यूनरल एंड बरियल राइट्स। हम अपनी वसीयत में ये सब कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी जनाजे की नमाज और हमारा जो कफन दफन है वो कैसे होगा, तो इसमें भी आप तफसील से अगर पढ़ के देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसका खुलासा भी उर्दू में बोलूंगी तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। मसलन इसमें एक चीज़ ये आती है कि मेरी बॉडी को बाहर नहीं ले जाया जाएगा और बेकार किस्म के टेस्टों में डालकर और हमारे जिस्मों में ऐसी कोई और चीज़ें नहीं होंगी। फिर बॉडी ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी इसमें ये चीज़ मौजूद है। फिर इसी तरह मुझे नहलवाया भी जाएगा और मुझे कफन भी पहनाया जाएगा और इसी तरह मेरे ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी और ये सब कुछ इस्लामिक रूल्स के मुताबिक होगा, ठीक है। ये तो इंशाल्लाह मैं कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम मुल्कों में तो लिख के रख लीजिए ताकि ये तो पता हो कि हम मुसलमान हैं। फिर इसी तरह से मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की जाए, ये प्रायोरिटी होगी। फिर इसी तरह से मेरी तदफीन एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, देर ना की जाए मेरी तदफीन में, क्योंकि हदीस में आता है कि जनाजे को फौरन यानी उसकी जगह पे पहुंचा दो, अगर नेक है तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उसको उसकी जगह से दूर करो, और अगर वो बद है तो खुदा ना खास्ता उसके हिस्से का अजाब तुम्हारे घर में ही ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो फौरन इसको करवा देना चाहिए, बिला वजह इसको डिले नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से सूरज डूबने से पहले अगर उसी दिन जिससे मेरी डेथ हुई अगर उसी दिन मुझे दफन कर दिया जाए या फिर उससे अगले दिन, तो ये बेहतर होगा, यानी इससे ज्यादा डिले ना किया जाए। फिर इसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं जगह खाली है कि वो किसी को नॉमिनेट और अपॉइंट करते हैं, इसमें आप नाम लिख सकते हैं कि जो भी आपकी ये सारे कामों को करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिख सकते हैं, आप अपनी मस्जिद का नाम लिख सकते हैं, फलां मस्जिद है उसके इमाम मेरी जनाजा पढ़ाएं या मुझे उस फ्यूनरल होम में गुसल करवाया जाए, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर इस तरह की ये चीज़ें ना भी हों तो उसकी जगह कोई फिर दूसरे का नाम भी लिखा जा सकता है। फिर इसी तरह से इसके बाद आगे देखिए कि फ्यूनरल गाइडलाइंस की तरफ इन्होंने रेफर किया कि उसको फॉलो किया जाए, मुस्लिम फ्यूनरल गाइड जो है, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे ये काम करे तो वो फिर इन चीज़ों को उस रोशनी में करेगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल जो है ये गार्डियनशिप के नाम पे, जिसमें हम फिर दोबारा ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि जो हमारे बाद हमारे बच्चे या हमारे जो डिपेंडेंट कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए या किसी को आपने पाला हुआ था यानी मुंह बोले बच्चे जो भी थे, उन सब के लिए ये सब कुछ क्या होगा। फिर इसी में आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके नाम की चीज़ें हैं, कोई लीज है आपके नाम पे, घर किराए पे लिया हुआ है या कोई मॉर्गेज है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जो भी चीज़ें, तो आप उसके बारे में इस हिस्से में गाइडलाइन कर सकते हैं, और नीचे ये साइन करने की जगह भी मौजूद है कि जहाँ जहाँ आप करें। फिर ये सारा कुछ इसी से मुतालिक है, इसको आप खुद बाद में पढ़िएगा। थर्ड आर्टिकल को देखिएगा, डेब्ट्स एंड एक्सपेंसेस। डेब्ट समझते ही आप, कर्जे में और कुछ चीजों के एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें उसके बारे में गाइडलाइन है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माल में से सबसे पहले मेरे कर्जे दिए जाएं और इसी तरह से मेरे एक्सपेंसेस पूरे किए जाएं जो भी कफन दफन के होंगे। फिर अगला फोर्थ आर्टिकल जो है, जिसमें अमेंडमेंट्स टू दी सक्सेशंस, इसमें कुछ चीजें ये लिखी हैं कि बिल फर्ज जिनको मेरी विरासत मिलनी थी उनमें से कोई उस वक्त डिक्लेयर कर देता है कि मैं नॉन मुस्लिम हूं तो फिर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। वही हदीस है ना, मुसलमान का वारिस काफिर नहीं होता और काफिर का वारिस मुसलमान नहीं होता। तो कोई ऐसी चीज है, इस तरह कातिल, हदीस में आता है कि कातिल का हिस्सा विरासत में नहीं, खुदा न खास्ता बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर मेरा बेटा मुझे कत्ल कर दे तो उसको मेरी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको देखिएगा, ये मोर क्रिटिकल थोड़ा सा होता है कि जो कुछ भी मेरे पास चीजें हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। पहला क्या है, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस, यानी जिसको सदके में दिया जा सकता है। इसमें परसेंटेज आप खुद लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ, ये बेसिकली आपकी वसीयत का वो हिस्सा है जो इस्लाम ने आपके लिए रखा है। बात वाजे, 1/3 के अंदर आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, मसलन $1 ऑफ दोज हेयर एक्सक्लूड ड्यू टू द प्रोविजन आर्टिकल 4, यानी मेरे इस माल में से इतने परसेंट हिस्सा जो अमाउंट में इतना बनता है मेरे माल की उसको अलग किया जाएगा। ये डिफरेंट इन्होंने एस्पेक्ट्स लिखे हैं कि आपको अगर जरूरत पड़े तो, यानी आप अपने माल की वसीयत में किसी इदारे का नाम, किसी जगह का, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ माई इस्टेट, इसमें आप देखिए कि आपको पता है जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर घर आपके नाम है तो आपके ही नाम पे, अगर आपने किराए पे घर लिया है तो उस घर की लीज आप ही के नाम पे, कोई दूसरा नहीं रह सकता। ये इस किस्म की लीगल चीजें हैं। तो बेसिकली फिर इसमें सब्सिट्यूट दिए जाते हैं कि आप इसके बाद दूसरे को मेरी चीज दे सकते हैं, और मेरे बाद मेरे बच्चे, फिर मेरे ग्रैंडसन, फादर, ब्रदर एंड वो दूसरे जो भी लोग हैं वो मेरी जगह पे इन चीजों में आएंगे। आगे आप देखिए कि स्पाउस की बात है, शौहर और बीवी, यहाँ बिल्कुल वही हिस्से होंगे इंशाल्लाह जो आप यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़ल उन्सयैन से लेकर, यानी आयत 12, 13 और 14 सूरत निसा की, कि अगर मेरा शौहर है तो बीवी दोनों का 1/4 और हाफ। आपको पता है कि शौहर फौत हो जाए तो बीवी का हिस्सा कितना होता है, बच्चे हैं तो 1/8, बच्चे नहीं हैं तो 1/4। इसके ऑपोजिट बीवी पहले फौत हो जाए तो उसका हिस्सा शौहर को कितना मिलेगा, अगर बच्चे हैं तो 1/4 और बच्चे नहीं हैं तो आधी जायदाद। तो मरते ही आधी मियाँ ने ले जानी है, अब क्यों छुपाती हैं, आप भी दे दीजिए। आज तो हम उनको कहते हैं हमारे पास मरने को नहीं, जहर खाने को कोई नहीं है, और मरने के बाद जब वो निकलता है तो वो मेरा ले, वो जो गम उनको हमारी मौत का होता है वो खुशी में बदल जाएगा कि चलो दुनिया में नहीं देती थी लेती आज देखे गई है। और मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ, आप लोगों ने मेरे ये जुमले सुने होंगे, मैं जब अल्लाह की इस बात पे हैरान हो जाती हूँ कि वो बीवियाँ जो अपने शौहरों को, अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को कुछ देना ही नहीं पसंद करती, वो देख लीजिए अगली आइटम में फादर का हिस्सा 1/6 है। अगर एक मर्द $6 लाख छोड़ के फौत होता है तो उसके बाप को 1/6 मिलेगा, $1 लाख मिलेगा। बीवी को कितना मिलेगा, अगर बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा, बाप से कम है। एक चीज के 6 हिस्से करे तो टुकड़ा बड़ा होगा, ये 8 हिस्से करेंगे तो छोटा होगा। तो यहां से देखिए कि माँ बाप को आपसे ज्यादा मिलना है, अल्लाह ना करे अगर आपके शौहर की डेथ हो गई तो जिंदगी में क्यों छोटी छोटी बातों पे कंजूसियां करके हम आखरत खराब करते हैं। फिर आगे देखिए नंबर 3 आइटम में मदर का हक है, 1/6 होता है, कुछ हालात में 1/3 भी है, यानी पूरी जायदाद का 1/3 हिस्सा माँ को मिल जाएगा। फिर बच्चों का हिस्सा जो भी लेफ्ट ओवर है 2:1 की रेशियो है, मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए स्किप करवा दें तो अच्छा है, वरना हम इसी पे लग जाएंगे तो बहुत ही लंबा होगा। इसमें आप देखिए इन्होंने तकरीबन 8 बच्चों तक का रखा है ना, अब 8 बच्चे आज किसके होते हैं, लेकिन बहरहाल 8 तक इन्होंने हद रखी है, कम भी हो तो ज्यादा भी हो। फिर 5वें दर्जे पे भाई बहनों के हिस्से हैं, उसमें भी अगर सम केसेस होते हैं कि भाई बहनों को मिलते हैं, हर हालात में नहीं मिलते, ये कंडीशनल है, तो उसमें भाई बहनों के नंबर 7 तक लिखे गए हैं कितने हों। फिर इसी तरह अगला हिस्सा इसमें अहम है, ट्रस्टीज फॉर माइनर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं अब उनका कौन बाद में करेगा, क्योंकि देखिए ना बड़े बच्चे हैं उनके नाम आपने मूव कर दिए, उनके आईडी कार्ड सब कुछ हो गया, बहुत छोटे बच्चे भी तो होते हैं ना मरने वाले के, तो फिर उस बच्चे का ट्रस्टी पहले बनेगा, फिर ट्रस्टी के बाद वो कौन होगा उसके नाम इसमें लिखे हुए, तो ये काफी डिटेल से बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे फायदा ये होता है कि इन चीजों को अगर आप अपने पास रख लें और किसी भी लॉयर के पास बैठकर अगर आप इसको फिल करके अपने पास रख लेते हैं, इंशाल्लाह फायदा है। लेकिन इसमें एक चीज नीचे जरूर लिख दें कि मेरी जिंदगी में मुझे हक है कि मैं इसको बदल सकूं। आज हालात कुछ हैं, कल कुछ हैं, फिर बाद दफा आप देखिए आगे इसमें सेपरेबिलिटी भी लिखी हुई है, कई हालात जिंदगी में बदल जाते हैं। आज जो बीवी है हो सकता है आपकी तलाक ही उससे हो जाए, या इसी तरह के कुछ और हालात हों, और एंड पे आप देखिए कि विटनेसेस बनाकर फिर इसको किसी से भी इसको करवाया जाएगा, तो गोया के जो आपका माल था, जो चीजें थी, उसको इसमें रखा गया। इसके बाद अगर आप पेज नंबर 7 पे आ जाएं तो फ्यूनरल गाइडलाइन है। ये है वो गाइडलाइन बेसिकली जो आप इसमें क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आपको गुसल देता है तो वो इन चीजों को फॉलो करेगा। ये सिंपल है, वही चीजें जो अभी हम पढ़ चुके हैं गुसल में, हमने इसी सेमिनार में पढ़ी कि गुसल कैसे किया जाएगा। मसलन गुसल ये है कि मेरे जिस्म को दूसरी जगह मूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इवन अगर मैंने पहले से इसकी वसीयत की भी हुई थी तो इसको नहीं माना जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में छोड़ा जाएगा। फिर मेरे रिश्तेदार जो हैं वो अगर मुझे नहलाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर सलातुल जनाजा आफ्टर गुसल और ये सब कुछ जनाजा पढ़ा जाएगा। फिर कौन पढ़ेगा, कायद और इमाम और फलां मस्जिद, ये आप देख रहे हैं कि डैश है, इसकी जगह पे आप मस्जिद का नाम लिख सकते हैं। फिर इस तरह ये भी है कि मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ कि किसी किस्म की कोई बेदा कोई ऐसी चीज़ जो है वो मेरे नाम पर नहीं की जाएगी और कोई औरत मेरे जनाजे के साथ नहीं जाएगी। फिर इसके बाद देखिए बरियल है दफनाना, कोई अजान नहीं दी जाएगी कब्रिस्तान में जाकर, कोई कुरान की आयतें नहीं पढ़ी जाएंगी। इसको हम भी इंशाल्लाह उर्दू में करेंगे, इसलिए आप डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको इससे एक दफ़ा मुतारफ करवा रही हूँ, बाकी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। फिर इसी तरह मेरी कब्र जो है उसको बहुत प्रोमिनेंट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई कतबा नहीं लगेगा और इस तरह उसको सजाया नहीं जाएगा। और इसी तरह किसी मस्जिद के अंदर मुझे दफन नहीं किया जाएगा। फिर इस तरह कुछ मिसलेनियस चीजें हैं कि कोई गैदरिंग नहीं होगी इसाले सवाब के नाम पे, कोई कुरान खानी के नाम पे। और ये पेपर वैसे इसलिए अच्छा है कि इसको उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया हुआ है। कोई भी चीज अगर इसमें ऐसी है जो मेरी नजर से नहीं गुजरी तो मैं उससे बरी हूँ। हमने इंशाल्लाह कुरान सुन्नत से चीजें देख लेनी है और उसी के मुताबिक हम अपने आप को रखेंगे। फिर इसी तरह इसमें इन्होंने ये भी लिखे है कि कोई आउटस्टैंडिंग लोन है और कोई बिल मेरे नाम पे है तो वो मेरे तरफ से पे किया जाएगा। और इसी तरह से कोई फिदिया है रोजों के छोड़ने का या कोई नजर वगैरह थी तो उसको मेरे 1/3 के अंदर से माल जो वसीयत का था उसमें दिया जाएगा। फिर अगला पेज बहुत क्रिटिकल है, सुबह भी जब मैंने देखा तो मैं इस पेज पे रुक गई। लिस्ट ऑफ डेब्ट एंड एसेट्स ऑफ, ये बड़ा मुझे लगा, मैंने कहा एक मुसलमान को इस पेपर की क्या जरूरत है, और स्पेशली हम जो माशाल्लाह इतने अच्छे वेस्टर्नाइज कंट्रीज में रहते हैं और हम में से कोई भी गरीब नहीं है, ये तो पक्की बात है ना, है कोई हम में से गरीब? कोई भी गरीब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें मुफलसी से बचाए, गुर्बत से बचाए और कलाश होने से बचाए और इस माल को अपने रास्तों में लगाए, तो ये डेब्ट का किस्सा तो दुनिया में खत्म होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप देखिए इन्होंने 10 आइटम्स रखे हैं डेब्ट के नाम पे, जिसमें कोई 5 तो हमारे क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, एक हमारा घर होगा, एक हमारी जायदाद होगी, 4 गाड़ियां होंगी। एक मुसलमान का ये लाइफस्टाइल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो कर्ज को पसंद करते थे और ना बिला वजह यानी इसकी रुख्सत देते थे। कर्ज जो है वो एक इंतहाई सूरत है। जब आप कुरान में सूरह बकरा का वो हिस्सा जो तीसरे पारे के शुरू से लेकर पहले रुकू को छोड़कर शुरू होता है, ऑलमोस्ट आखिरी रुकू से पहले तक सारी मनी की तरतीब है। जिस सोसाइटी में सदका आम होगा वहां सूद नहीं होगा, और सूद नहीं होगा तो वहां इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी बरकतें भी आएंगी। लेकिन आज देखिए ये सारा इकोनॉमिकल डिसऑर्डर है, आप कह लीजिए इकोनॉमिकल टेररिज्म का शिकार है कि मुसलमान भी कर्जों में डूबा हुआ है, काफिर की तो बात क्या करनी। तो इस वक्त बात बड़ी रकीक हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब हम अपनी ये विल लिखें तो हम इधर एक लंबी सी लाइन लगा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्जों के बोझ से आजाद हैं। कर्ज एक फंदा, अरबी जुबान की कहावत है कि कर्ज मोहब्बत की कैंची है। हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, हम तो बिल लिखने बैठे थे। अमूमन ये हर दूसरे चौथे का ही किस्सा हो सकता है कि जब एक सिस्टर ने मेरे से ये मसला पूछा कि मेरे बाप की वफात के बाद भाइयों ने जायदाद नहीं बांटी, तो अब मुझे ख्याल आ रहा है कि हमने नहीं लिया तो अब हम क्या करें, कैसे ले। जब डिटेल सारी बात की सुनी, पहले तो मुझे लगा कि भाई कैसी बात है, भाइयों ने इतने सालों में आपको पैसा ही नहीं दिया। बाद में पता चला कि ये घर ये फैक्ट्री थी अब्बू की, वो सब कर्ज पे थी। फिर क्या हुआ, मैंने कहा उसका क्या, बस अब्बू पहले किस्से देते थे अब भाई देते हैं। जब बैठ के पेपर वैन पकड़ के उनसे फिगर आउट किया तो बाप ने जो जायदाद छोड़ी थी उससे तो कई गुना ज्यादा कर्ज था। तो मैंने कहा मेरी बहन, ना तो आपको कुछ मिलना था उसमें, ना आपके भाइयों को मिलना था। अब्बा जी जो छोड़ गए थे, अगर कैश या किसी सूरत में उसको बेच बांट के उनके नाम का कर्ज दूर कर देते तो शायद वो आज आसूदगी में होते। हम अपने कर्जों का अपने बच्चों के नाम पे मूव करके अजाब की किस्तें आगे डलवा लेते हैं, और जबकि उस कर्ज के अंदर अल्लाह की नाफरमानी हो। हदीस में आता है कि चार लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत है। सूद के चार जुर्म हैं, आकिलुहू व मुकिलुहू व शाहिदुहू व कातिबुहू। आकिल जो ले रहा है, मुकिल जो खिला रहा है, यानी आप कह ले हम सूद लेते नहीं, देते ही है ना, तो फिर आप कौन है? मुकिल है। और शाहिद कौन है? जो उसकी गवाही देता है, विटनेस है, चाहे वो किसी बैंक की कुर्सी पे बैठा हुआ कोई उस काम को करने वाला अफसर है, और कातिब उसको लिखने वाला, डॉक्यूमेंटेशन करने वाला। तो हर वो कमाई जिसके अंदर किसी तरफ से इंटरेस्ट आता है, यकीन कीजिए ये अपनी नस्लों के लिए एक अजाब जारिया शुरू करने वाला मामला है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। लेकिन ये चंद कड़वे जुमले मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपसे बोलूं, क्योंकि हम वसीयत करने बैठे हैं। अगर हमारी जायदादों में कर्ज छूटे, कर्ज भी बुरा है, लेकिन अगर वो कर्ज है जिसमें इंटरेस्ट है, तो सबसे पहली फुर्सत में हमें ये करना है कि अपनी वो चीजें जो पेड ऑफ है उनको बेचें, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के हुक्म पे अपना जेवर बेचें, पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज बेचें, और अपने घरों को यहाँ अपनी गाड़ियों को पे ऑफ करवाएं। बड़े घर से छोटे में आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह देगा फिर बड़े में चले जाइएगा। लेकिन ये तो एक खुल्लम खुल्ला जंग है ना, फाज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली, के चार चार घर लिए हुए क्यों? उसका भी किराया आएगा, उसका भी आएगा, उसका आएगा। माशाल्लाह ये चार क्यों है? चारों पेड ऑफ है, चारों को ही नहीं पेड ऑफ। यानी ऐसे ऐसे केसेस है हमारी सिस्टर जो कुरान पढ़ती है फिर उनको समझ आता है। तो जी ससुराल है, उन्होंने कर्ज पे लिए हुए, तो वो कहती है अच्छा चारों में से दो को बेच दो तो दो पे ऑफ कर दो। कहते तुम बेवकूफ हो, चार बेटे हैं, चार घर बनाने हैं, कब होंगे पूरे? 400 साल में भी नहीं पूरे होंगे घर। तो भाई आप उसमें से दो को बेच दें, दो पूरे अपने हो जाएंगे। और आपको नहीं पता, देखिए ये कैसा माया जाल है। आप ये पेन खरीद रहे हैं $1 का, आप अभी मुझे $1 देते हैं, मेरे से पेन लेके चले जाइए, आप खुश हैं, आपको एक का मिला। मैं आपको कहती हूँ $1 छोड़ दीजिए, आप ऐसा कीजिए मुझे 1 साल में पे कर दीजिए, और हर महीने आप मुझे 10p दे दीजिएगा। मिसाल दे रही हूँ, अब ना $1 बड़ा है ना 10p बड़े हैं, लेकिन बात समझ लीजिए। अब आप जब मुझे 1 साल पूरा पी करेंगे, तो आपकी अकल भी तो सोचेगी कि 1 साल में तो 12 महीने होते हैं, तो ये पेन तो अगर तो इसके 10 10 हिस्से करते तो 10 बनने थे। तो ये जो ऊपर के दो क्या है? ये ऊपर के दो इंटरेस्ट है। मैं आपसे अकलमंद होंगी तो मैं कहूंगी नहीं मेरी बहन, आप 1 साल में नहीं दे, मुझे 2 साल में दे दें। 10 10p देती रहे, 10 नहीं दें, चले आप मुझे 8 दे दें, 5 दे दें, जो हर महीने 5 पेन नहीं देती जाइए, लेकिन आप 2 साल में दें। ये तो मेरा कारोबार, ये पेन तो मेरा कैपिटल है, ये पेन तो मेरा कारोबार है। आप कहते हैं कि ये कोई खाला फुफो के बेटे हैं जो आपको खुशी खुशी कर्जे देते हैं। जब मैं यहाँ आई शुरू में, आज से 15 साल गुजर गए, तो मैं पढ़ी थी, मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, घर बैठे आपको कार्ड भेजते हैं हमसे उधार लो और खर्चे चीजें करो। पाकिस्तान में तो कोई किसी को उधार नहीं देता। कहो उधार कहाँ देते हैं, ये तो अपनी कारोबार खिलाते हैं। तो बात समझ रहे, अगर आप 1 साल में मुझे देंगी तो $1.20 का आपने मेरे से ये पेन खरीदा। अगर आप इसको 2 साल में पे करेंगी वही पेन है, लेकिन ये $2.40 का हो गया, फायदा किसका हो रहा है? मेरा फायदा हो रहा है। मैं ऐसे 1000 पेन लेके आप में से 1000 लोगों को बांट दूं घर बैठे, मुझे हर महीने वो 10 10p करके फिर 200 400 आ जाएगा, तो मैं तो मजे में बैठी हूँ। ये है सूद, रिबा कहते हैं अरबी में इसको, गिल्टी है, ये एक ट्यूमर है। यानी असल माल नहीं बढ़ता, माल के ऊपर माल ऐसे ही बढ़ता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। तो लिहाजा आज मुसलमानों को जो नहीं बात इस वक्त हजम होती वो इंटरेस्ट की है, लेकिन ये बात करनी फर्ज है। कुरान में किसी मौजू पे इतनी शिद्दत नहीं बरती गई जितनी के इस पे है। तो माल की बात आएगी तो ये बात तो बीच में आएगी। तो दुआ करते हैं हम सब अपने लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए कि उनको कर्जों से बचाए। मैं आपको इसमें एक दुआ भी बताना चाहूंगी इंशाल्लाह। अगर आप असनुल बयान है आप लोगों के घरों में, सऊदी अरब जाएं तो किंग फहद कंपनी का छपा हुआ भी वही कुरान है। दारुसलाम से लेंगे तो असनुल बयान उसका नाम है। सऊदी अरब जब आप हज करते हैं तो अमूमन हाजियों को वो एक ब्लू कलर का मोटा सा कुरान देते हैं, जिसमें ऊपर अरबी उर्दू तर्जमा होता है और नीचे हाशी होता है। इन दोनों कुरान में आपको सूरत आल इमरान की आयतें अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इसकी तफसीर में एक दुआ मिलेगी, अब जाके बाद में पढ़ लीजिए। हजरत माज ने अल्लाह के नबी से ये ख्वाहिश की थी कि अल्लाह के नबी मेरे ऊपर कर्ज आ गया है तो मुझे कोई दुआ बताएं, तो आपने फिर ये आयतें और उसके साथ फिर उसमें कुछ अल्फाज बढ़ाकर कहे, तो आपने कहा ये दुआ पढ़ो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ों के बराबर कर्ज भी है तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, उतरवा देगा। तो पहली बात प्रैक्टिकली ये कि आइंदा कर्ज लेने से तौबा, नो मोर क्रेडिट कार्ड, जिनका बिल नहीं दिया करें यूज तो उतने में करें, ये आपका इश्यू है, पिछली चीजों को पे ऑफ करें, और अगर हाथ में कुछ नहीं है तो फिर उनको देकर तो फिर किराए पे आ जाए। अल्लाह के नबी का तो घर भी अपना नहीं था। अभी सुन लिया, एक सफेद खच्चर छोड़ के गए थे और चंद चीजें जरूरत की, वो भी बैतुल माल में चली गई। तो उम्मते मुस्लिमा अगर बहुत कुछ छोड़ जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा। तो लिहाजा ये एक विल का पेपर था जिसने हम सबको इस चीज को सोचने का मौका दिया कि मेरे पास है क्या। और मुसलमान का माल जब तक पाक नहीं होगा, ना जिंदगी में सुकून होगा और ना औलादें फरमा बरदार होंगी। ये दो बातें लिख के रख लीजिए, जब मेरे और आपके माल में अल्लाह ना करे एक कतरा हराम का डल जाता है तो बेसुकूनी का एक कतरा डल गया, रातों की नींद बेचैन परेशान, फिर उसको उलझाने के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पे हम क्या कुछ देखते हैं, खुशी नहीं मिलेगी। और रंग बिरंगी बीमारियां, ऐसी बीमारी जिसका नाम कभी आपके बड़ों ने सुना भी नहीं था, ऐसी बीमारी ऐसी तकलीफ के जिसके अंदर पता चलता है ये हड्डियों के अंदर से फलां चीज फलां कम हो गई है, ये नाखूनों के अंदर की जड़ों में ये प्रॉब्लम हो गई है, न्यूबॉर्न बेबी से लेके यंगस्टर से लेके जिसको देखिए आपको ये चीजें दिखेंगी, ये सिर्फ इस बात की अलामत होती है कि समथिंग इज रॉन्ग। और अल्लाह पाक करने के लिए फिर इतनी अजीबो गरीब मुश्किलों में डाल देते हैं बंदे को कि उसको समझ ही नहीं आती। तो लिहाजा हम अपने माल को पाक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से हमारे ऊपर बड़ी खैर भी आएगी और उसकी बरकत भी आएगी। ये तो था हमारा ये डॉक्यूमेंट जो आप सब आज अपने साथ लेके जा रहे हैं फोल्डर में, इसकी कॉपीज कर सकते हैं आप लोग, देना चाहें दूसरों को दें और लिख के रख लीजिए, इंशाल्लाह ये आपके इस मॉल के लिए लीगलाइज्ड है।